हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत ने जैसे ही कहा कि जूली उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट है, वेहा आंखें भाड़ कर उसे देखने लगी, जैसे उसे इस बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं। वो रोते हुए बोली, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। क्या सच में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं आपको सुंदर लगती हूँ? वेदांत ने आगे बढ़कर उसके सिर से अपना कर्ल छुड़ा लिया और अपनी आंखें बंद करके हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, अब रोना बंद करो। इतना बोलकर वो उससे अलग हुआ और उसके गालों पर आए आंसू पहुंचने लगा। फिर उसने अपना रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर फैली लिपस्टिक साफ की और फिर कहा, जो कुछ हल्का पहन लो, मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वेहा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो फिर हाल वेदांत के इस बचकाने सवाल का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो वेदांत से इम्प्रेस है या नहीं। वो उसे बस एक बच्चे की नज़र से देखती है जिसे उसे पूरी जिंदगी संभालना है। बस इतना ख्याल है विहा के बारे में उसके दिल में, इससे आगे कुछ नहीं। उसने कभी विहा को ऐसी नज़र से नहीं देखा जैसे एक हस्बैंड देखता है अपनी पत्नी को उसे छूने की लालसा के साथ। वहीं वेदांत का प्यार कुछ ज्यादा ही प्योर था। उसे फिलहाल विहा की मौजूदगी ही बहुत सुकून देती थी। वो उसे फिलहाल कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, ना कि प्लेजर देने की। वेदांत ने गहरी सांस लेकर हल्के से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, टोमैटो तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करती हो, प्लीज मेरी एक छोटी सी बात मान लो। पीरियड के समय तुम ऐसी बातें बिल्कुल मत सोचा करो। तुम जितनी बार कोशिश करोगी कि कम सोचो उतना इम्प्रूवमेंट होगा। तुम्हें पता है ओवरथिंकिंग से बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होती है। विहा ने माथे पर बाल डालते हुए कहा, मतलब आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है? बातें क्यों घुमा रहे हो आप गोल गोल? वेदांत ने आंखें बंद की और फिर एक और लंबी सांस ली ताकि खुद को कंट्रोल कर पाए। फिर आंखें खोलकर विहा को देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक बात मानोगी? ये हैवी कपड़े निकाल कर आओ और एक फ्रॉक पहन लो, कुछ भी अच्छा सा, फिर हम घूमने चलेंगे थोड़ी देर, ओके? इतना बोलकर वेदांत ने कुछ पल उसके गाल को प्यार से सहलाया और फिर वहां से उठकर वापस बेड पर बिखरे अपने सामान को समेटने लगा, जिसमें उसका फोन, लैपटॉप और कुछ फाइल्स थीं। वेहा भी कुछ देर तक वेदांत को देखती रही और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक येलो कलर की फ्लावर वाली फ्रॉक पहनकर बाहर आई। उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई और फिर वेदांत के पास जाते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। वेदांत भी मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, आज तुम टोमैटो कम और पपीता ज्यादा लग रही हो। वेहा मुंह गंदा सा बनाते हुए बोली, आपको आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ खाने वाले सामान के नाम नजर आ रहे हैं। सब लोग कितने प्यारे नाम से बुलाते हैं अपनी पत्नी को, जैसे वाइफ, बेबी, हनी, स्वीटी, स्वीटहार्ट और भी पता नहीं क्या क्या, और एक आप हो, पता नहीं कहाँ से ऐसे अजीबो गरीब नाम लेकर आ रहे हो। टोमैटो, पिद्दी, पपीता और ये एक बच्चा, आई डोंट लाइक बच्चा, इसमें एकदम बच्चों वाली फीलिंग आती है। पर मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अब तो काफी मैच्योर हो गई हूँ, और उससे भी बड़ी बात मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा औरत को कोई बच्चा बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। वेदांत उसके बाद खुद को मुस्कुराने से रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हाल में जुगनेश, रितेश, राधिका और माधवी भी बैठे थे और वो उनके सामने ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था कि उसकी और उसकी पत्नी के बीच का रिश्ता उतना बुरा भी नहीं है जितना बाहर से लग रहा है, क्योंकि अगर ये उन्हें पता चला तो वो इस अच्छे रिश्ते में भी फूट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो फिलहाल वेदांत हैंडल नहीं कर सकता था। रोहान और निवेदिता वाला रिश्ता ही इतना बिखरा हुआ था, उसको समेटने में वेदांत की आधी जिंदगी जा चुकी थी। शायद पत्नी वाला रिश्ता बिखरा तो पूरी जिंदगी वो उसे बस समेटने में लग जाएगा। वेदांत और विहा की गाड़ी जा चुकी थी तभी रोहान और अनाही की गाड़ी वापस घर आ चुकी थी। अनाही और रोहान कमरे में चुपचाप बैठे थे। अनाही बालकनी में थी तो वहीं रोहान कमरे के अंदर। बीच का वो ग्लास डोर उनके लिए जैसे लक्ष्मण रेखा हो गया था। वो उनके रिश्ते को बिल्कुल आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। रोहान बस ये सोच रहा था कि अब कैसे वो अनाही को अंदर बुलाए, क्योंकि अगर आज रात भी वो बाहर सोई और अगर ठंड बढ़ गई तो उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो रोहान बिल्कुल नहीं चाहता था। वहीं अनाही ब्रेकफास्ट कर चुकी थी और अब मॉर्निंग में जो दवाइयाँ लेनी थीं उन सब दवाइयों को पढ़ पढ़कर देख रही थी कि कौन सी दवा कितनी हैवी है, क्योंकि उसे ज्यादा हैवी डोज नहीं लेना था, वरना वो पूरे दिन नींद के गोले में बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी रहेगी। लेकिन अनाही को आज सोना बिल्कुल नहीं था। उसे अपनी मॉम से बात करनी थी और उससे भी बड़ी बात, अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, ताकि वो इस बालकनी को थोड़ा वार्म लुक देकर खुद को ठंड से बचा पाए। अनाही ने दवाई ली और फिर अपने हाथ में पड़ी नोटबुक में कुछ लिखने लगी। उसने कुछ ही पलों में एक लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसमें सबसे पहले था बालकनी के लिए कर्टन्स जो थोड़े वार्म क्लॉथ से बने हों। उसके बाद थे दो कारपेट, ताकि वो अगर नंगे पांव बालकनी के फ्लोर पर चले तो उसे ठंड का एहसास न हो। और तीसरा था एक और भी ज्यादा हैवी कम्फर्टर, उसके साथ ही एक हीटर। उसने सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया और फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये काम हो गया, अब शायद मॉम से बात कर लेनी चाहिए। उसने इतना बोलकर फोन उठाया और फिर काशी का नंबर ढूंढने लगी। उसे बस काशी का नंबर मिला ही था कि इतने में ग्लास डोर लॉक हुआ। अनाही ने आंखें बंद करके कहा, हनुमान जी, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? उसने फोन को वहीं सोफे पर फेंका और उठकर ग्लास डोर ओपन करते हुए बोली, आपको क्या चाहिए, मुझे आप साफ साफ बोल दीजिए। हनुमान जी, बार बार परेशान मत कीजिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। रोहान ने अपना गला साफ करते हुए धीरे से कहा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और आप ऑलरेडी बीमार हैं, मैं नहीं चाहता। अनाही ने उसके बाद बीच में काटते हुए कहा, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी वजह से ज्यादा बीमार हो जाऊं और मेरे मरने का इल्ज़ाम आप पर लग जाए, तो डोंट वरी, इतनी सी ठंड में मैं मरने वाली नहीं हूं, और अगर ज्यादा सीरियस भी हो जाऊंगी तो मैं खुद बोलूंगी कि बालकनी को मैंने चुना था, आपने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं बालकनी में रहूं। खुश, अब प्लीज आप यहां से जाइए। रोहान को अनाही का बिहेवियर बहुत हद तक चेंज नजर आ रहा था। यूजुअली वो बहुत ज्यादा आराम से बात करती है, अगर उसे कोई गुस्से वाली बात भी कहनी हो तब भी वो बिल्कुल शांत लहजे में सामने वाले को अपनी बात समझा देती है। लेकिन पिछले दिन से लेकर अब तक अनाही उस पर बहुत बार चिल्ला चुकी थी, और उसका रीजन था उसका कोल्ड। वो बीमार होने की वजह से इरिटेट हो चुकी थी। उसका हेडेक, बॉडी पेन, नाक में होती इचिंग, बार बार छींकना, खांसी आना, इन सब ने उसको इतना तंग कर लिया था कि रोहान का सिर्फ ग्लास डोर लॉक करना भी उसे इतना बुरा लग रहा था, जो नॉर्मली बीमार होने पर अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। रोहान ने जल्दी से अपनी सफाई में कहा, नहीं मैडम जी, मैं ये नहीं बोलने वाला था।
अनाही ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, तो रोहान जी, आपको जो बोलना है प्लीज जल्दी बोलिए, मुझे अपनी मॉम से बात करनी है और आप फिलहाल मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपकी पर्सनल स्पेस में अगर इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ तो सेम मैनर्स आप में भी होने चाहिए कि सामने वाले की जिंदगी और उसके प्राइवेट स्पेस में इंटरफेयर आप न हो। आप ही ने कहा था ना कि मेरा प्राइवेट स्पेस हमेशा ये बालकनी रहने वाला है, तो मैं खुश हूँ इस बालकनी में। आप क्यों बार बार आ जाते हैं मुझे और मेरे पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब करने के लिए? उसकी बात सुनकर रोहान बिल्कुल शांत पड़ चुका था, जैसे उसके पास इसका कोई जवाब न हो।